Şitici. Şitici. एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
जहां परिवर्तन नहीं होता वहां सब कुछ थम जाता है, मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए परिवर्तन, नयापन, नई खोज की आवश्यकता पड़ती है। विश्व हिंदी सचिवालय और धनदार शंभू की ओर से आप सभी स्थानीय व वेब के माध्यम से जुड़े हुए क्षितिज कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिवादन कर रहे हैं। आपका स्वागत है। श्रोतागण, आजकल किसी भी विषय को सीखने के लिए या उससे जानकारी प्राप्त करने के लिए विज्ञान ने ऐसी औजार दी है जिसके सदुपयोग से आसानी से अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। वह है संचार और प्रौद्योगिकी। आप यह अवश्य मानेंगे कि जरा सी उंगली की कसरत से दुनिया भर की जानकारियां हमारे सामने आ जाती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, यूट्यूब आदि ऐसे बहुत सारे औजार हैं जिससे हम जुड़े रहते हैं। विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से प्राथमिक व बैठका की कक्षा एक के अध्यापकों के लिए हिंदी के माध्यम से कक्षा में उसके उपयोग के संबंध में एक सफल दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिससे हमारे शिक्षक बंधु खूब प्रभावित हुए। वे हमारी भावी पीढ़ी के मार्गदर्शक बनेंगे। आज हमने स्टूडियो में उसी कार्यशाला के संचालक डॉक्टर संजय सचदेवा को आमंत्रित किया है। डॉक्टर संजय सचदेवा जी, नमस्कार।
नमस्कार।
मॉरिशस के MBC रेडियो स्टेशन में आपका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। आप संस्कृत में MPhil और PhD दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। संस्कृत में BA एवं MA श्री वेंकटेश्वर कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से। आजकल आप मॉरिशस में हैं और आप हमारे अध्यापकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। डॉक्टर संजय जी, हम आपसे यहाँ पर यात्रा के दौरान जो आपने किया उससे कुछ जानकारियाँ प्राप्त करना चाहेंगे। सर्वप्रथम हम यह जानना चाहेंगे कि आपका रुझान इस क्षेत्र में कैसे आया।
सबसे पहले तो इस साक्षात्कार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो 1992 में जब दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत ऑनर्स करने के लिए प्रवेश लिया और उसके बाद जब प्रथम वर्ष में जो है पूरे के पूरे विश्वविद्यालय में टॉप किया, स्वर्ण पदक मिला, उसके बाद से जो है इस विषय की तरफ और इस तरफ का एक रुझान बनना शुरू हुआ। उसके बाद जिन लोगों के साथ मैं संपर्क में रहा, मेरी प्राध्यापिका डॉक्टर पूर्णिमा भारद्वाज, उन्होंने जो है मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि मुझे जो है इस विषय के लिए और इस अध्यापन के लिए जो है कुछ ना कुछ करना चाहिए। फिर कारवां चलता गया, जैसे कहते हैं, तो 1992 से 1995 BA किया, फिर MA किया, फिर MPhil करी और फिर साथ में इसी विषय में संस्कृत में जो है PhD करने का जो है सौभाग्य मुझे मिला। इसी दौरान में जो है 1998 में लर्निंग एंड लीडरशिप इंस्टीट्यूट, एक छोटा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट था जहाँ पर मुझे पहली बार छोटे बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिला। ये मूल रूप से विद्यालय नहीं था, एक संस्था थी जहाँ पर मुझे डॉक्टर अतुल निश्चल ने जो है पढ़ाने का पहला अवसर प्रदान किया। और उसके बाद जो है हेरिटेज स्कूल वसंत कुंज में जो है पहली बार एक विद्यालय में जो है पढ़ाने का अवसर मिला। और उसके बाद जो रुचि है वो बढ़ती चली गई वहाँ पर, और आज लगभग 24 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए, तो अच्छा लगता है। तो इसके लिए जो मैं कह सकता हूँ कि जो जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरे घर वालों ने भी मुझे इस बारे में पूरा का पूरा समर्थन दिया, और मेरी प्राध्यापिका, विशेष तौर से मैं डॉक्टर पूर्णिमा भारद्वाज का जो उल्लेख करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया और प्रोत्साहित किया कि जो है मुझे इस विषय की तरफ और इस मार्ग की तरफ जो है चलना चाहिए जहाँ मैं समाज के इस बच्चों के लिए जो है मैं कुछ अगर कर सकूं। तो इस तरीके से जो है इस यात्रा जो है वो शुरू हुई और अभी तक निरंतर जो है वो चलती जा रही है।
बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। आपने अपनी यात्रा का वर्णन किया और मैं पूरे मॉरिशस की ओर से और अपनी ओर से आपने जो किया है उसके लिए बधाई देना चाहूँगा।
धन्यवाद।
अब दूसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहूँगा, आज के युग में संगणक, टैबलेट या प्रौद्योगिकी या मल्टीमीडिया का किस कक्षा में उपयोग कर सकते हैं तथा किस हद तक यह स्कूल में या पाठ्यक्रम में जोड़ना लाभप्रद है?
मेरा यह मानना है कि मनुष्य ने हमेशा समय समय पर जो है अपने आप को नए नए रूपों से अवगत कराया है, खासतौर पर जब हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। और जब हम लोग कहते हैं कि संगणक या प्रगणक, संगणक जिन्हें हम कैलकुलेटर को कहते हैं और प्रगणक कंप्यूटर के लिए प्रयोग करते हैं, सो आज की डेट में टैबलेट, टेक्नोलॉजी, प्रगणक, संगणक, मल्टीमीडिया, ये मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पाठ्यक्रम का या हमारे अध्ययन का एक प्रमुख हिस्सा बन चुके हैं, इसलिए उसको एक कक्षा तक जो है सीमित नहीं किया जा सकता। मेरा ये मानना है कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से लेकर कक्षा 12वीं और यहाँ तक कि विश्वविद्यालय स्तर तक जो है मल्टीमीडिया का अपना एक प्रभाव कहीं ना कहीं अब आने लगा है। जैसा कि हमने अभी दो दिन की अपनी कार्यशाला में भी देखा और बताया भी कि किस तरीके से जो है मल्टीमीडिया का प्रयोग करके जो है उच्चारण को अच्छे तरीके से सिखाया जा सकता है, वर्तनी को और सुधारा जा सकता है, कविताओं को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, और जो लास्ट में हमने सबसे जो हमारा अंतिम सत्र था जिसमें हमने दिखाया कि किस तरीके से कहानियाँ जो हैं वो एनिमेशन के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत की जा सकती हैं। जो कहानियाँ अक्सर शिक्षक जो हैं पहले पढ़कर सुनाया करते थे, बच्चों से बात कर सुनाया करते थे, आज एनिमेशन के माध्यम से वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है बच्चों तक पहुंच सकती हैं। तो इसलिए ये कहना गलत होगा कि उसको एक कक्षा तक सीमित रखना चाहिए। मेरा ये मानना है चाहे वो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं हैं जहां पर जो छोटी छोटी कविताएं पढ़ाई जाती हैं, और बड़ी कक्षाओं में वहां तो हम लोग देखते ही हैं किस तरीके से आज ICT जो है वो एक सबसे प्रमुख हिस्सा जो है उनके अध्यापन का, और अध्ययन और अध्यापन दोनों का जो है हिस्सा बन चुका है। इसलिए समय के साथ इंसान को बदलना चाहिए, अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है, ओपन माइंड होना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो हमें लगना चाहिए कि मल्टीमीडिया जो है आज हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसका एक प्रमुख अंग बन चुका है और हम उससे बचकर नहीं रह सकते।
बिल्कुल। और हमने अभी अभी देखा कि ये कोरोना काल के अंतर्गत, कोविड के अंतर्गत बहुत सारी शिक्षाएँ ऑनलाइन चलती थी, और जिसको यह ज्ञान नहीं है उनके लिए तो समस्या है। इसलिए यह मुझे भी ज़रूरी लगता है कि हर एक व्यक्ति को इससे जानकारी प्राप्त करनी ही है। आगे हम जानना चाहेंगे कि आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे जैसे हम इससे जुड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे अपने परिवार, समाज, दोस्तों से कटते भी जा रहे हैं, पुस्तकों का स्पर्श कम हो गया है, और ऐसा लगता है कि हम कुछ नाता तोड़ते जा रहे हैं?
आपके प्रश्न का उत्तर अभी आपने स्वयं ही दिया था थोड़ी देर पहले, जब आपने कहा कि पिछले 2 साल में हमने कोरोना के समय देखा कि किस तरह से जो है सारी शिक्षा पद्धति जो है वो ऑनलाइन शिक्षा की ओर मुड़ गई। तो हमने अपने देश में भी देखा और भी देशों का अनुभव हमारे सामने आया कि ये एक ऐसा समय था जब टेक्नोलॉजी अपने चरम पर थी, विद्यालय जो हैं वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से चल रहे थे, लेकिन सभी लोग जो हैं साथ थे, परिवार पूरा साथ था उस टेक्नोलॉजी के समय पर जो है, चाहे वो एक कमरे में पिता बैठे हैं, माता बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, और जो है कहीं ना कहीं उनको आपस में जुड़ने का अवसर जो है टेक्नोलॉजी के साथ मिला। दूसरा, ये कहना थोड़ा सा अनुचित होगा कि टेक्नोलॉजी जो है आज लोगों को जो है अलग कर रही है। अगर हम लोग देखें इस बात को, जो मोबाइल फ़ोन आज मल्टीमीडिया लेकर चल रहा है या कंप्यूटर है, आज कोई भी व्यक्ति अपने दूसरे देश में बैठे हुए व्यक्ति से ही बात कर सकता है। वही बच्चे जो कहीं बाहर पढ़ने के लिए गए हैं, आज वो अपने माता पिता के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ अनुभव करते हैं कि जब वो एक वीडियो कॉल के साथ जो है बात कर सकते हैं। मैं आपके देश में आया हूँ, मुझे भी 3 दिन हुए हैं इस देश में आए हुए, लेकिन मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मैं अपने परिवार से कहीं दूर हूँ। ये इसी टेक्नोलॉजी की देन है कि मैं उनसे शाम को जब मेरा अपना ये सत्र समाप्त हो जाता है उनसे मैं जो है बात कर सकता हूँ, वीडियो कॉल कर सकता हूँ। यहाँ तक कि फेसबुक पर उन लोगों ने मुझे मेरा सत्र लेते हुए लाइव देखा, तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो लोग जो यहाँ नहीं पहुँच सकते थे वो भी मुझे देख पा रहे थे, मेरे ही परिवार के जन थे और वो बहुत उत्साहित थे इस बात को लेके। कल रात को उन्होंने मुझसे बात करी कि हमें बड़ा अच्छा लगा आपको इस तरह से वहाँ पर देखते हुए। सो मुझे ऐसा लगता है ये हमारे ऊपर है कि हम टेक्नोलॉजी को किस तरीके से प्रयोग करते हैं। हर जो आविष्कार है, हम लोग ये पढ़ते आए हैं अपने बचपन से कि आविष्कार कोई भी होता है, विज्ञान जो है वो वरदान भी हो सकता है और अभिशाप भी हो सकता है। सो ये हमारे ऊपर है कि हम इस टेक्नोलॉजी को आज उसको वरदान के रूप में देखते हैं या अभिशाप के रूप में। मैं एक सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति हूँ और मेरा मानना है कि जब जब कोई परिवर्तन होता है उसमें सकारात्मकता देखनी चाहिए बजाय नकारात्मकता। और ये मानना चाहिए कि ये जो टेक्नोलॉजी है अगर उसका सही तरीके से उपयोग किया जाए, प्रयोग किया जाए, तो वो परिवारों को जोड़ने का काम करेगी बजाय तोड़ने का।
बिल्कुल सही आपने कहा। हम देखते हैं कि कभी कभी दो मित्र आपस में एक साथ जा रहे हैं लेकिन दोनों अपने अपने मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहे हैं, आपसी बातचीत बहुत कम होती है। जैसे आपने कहा कि इस सदुपयोग की बहुत आवश्यकता है, तो मैं सोचता हूँ कि हमारे अपने परिवार को, अपने विशेष रूप से जो हमारे एक पीढ़ी पीछे हैं, उनको हमें संकेत करना है कि इससे क्या क्या लाभ है और इसका उपयोग कैसे करना चाहिए, और हमारी भावी पीढ़ी को भी ये संकेत करना चाहिए कि इसका उपयोग कैसे करना चाहिए। अच्छा संजय जी, मैं आपसे यह भी जानना चाहूँगा कि अन्य भाषाओं और विषयों की तुलना में मल्टीमीडिया या प्रौद्योगिकी जिसे हम बोलते हैं, हिंदी के लिए कहाँ तक लाभप्रद है और भावी पीढ़ी के लिए वह कितना फ़ायदेमंद है?
मेरा मानना है कि कोई भी विषय हो, ख़ासतौर पर जब हम लोग हिंदी की बात कर रहे हैं, मल्टीमीडिया का प्रयोग जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। कई बार ये सुनने में आता है कि जो हिंदी के अध्यापक हैं या जो हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, वो थोड़ा सा अपने आप को इस मामले में कमज़ोर समझते हैं। मेरा मानना है उस कमज़ोरी से, उस इन्फीरियॉरिटी से जो है हमें यही इन भावना से बाहर आने की ज़रूरत है। हमने अपने दो दिन की कार्यशाला में भी देखा कि किस तरीके से जो है हिंदी को ही जो हमने प्रस्तुत किया, किस तरीके से उसमें जो है मल्टीमीडिया का प्रयोग किया जा सकता है और अच्छे तरीके से किया जा सकता है। और इतने लोग जो वहाँ पर आए थे, लगभग 180 के आसपास जो है अध्यापक अध्यापिकाएँ वहाँ पर थी, सभी ने उसका लाभ उठाया और सभी का एकमत था इस बारे में कि जो है हिंदी में भी मल्टीमीडिया का प्रयोग किया जा सकता है और हिंदी किसी भी भाषा से या किसी भी विषय से इस मामले में पीछे नहीं है। और आज के समय में जब हम लोग देखते हैं, चाहे वो हिंदी फिल्में बनती हैं, हिंदी विज्ञापनों को आप जब देखते हो, उसमें इस तरह की टेक्नोलॉजी का जो है प्रयोग किया जा रहा है, तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, जहाँ हमें लगता है कि हिंदी बहुत आवश्यक है, हिंदी को भी मल्टीमीडिया के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। ये कहीं ना कहीं एक, मुझे ऐसा लगता है, पूर्वाग्रह है इस बात को लेकर कि हिंदी में जो है आप तकनीक नहीं ला सकते या इस तरह से नहीं कर सकते। आज हिंदी में जितने फॉन्ट हैं, कृति देव से लेकर शुषा से लेकर, जिसमें आराम से आप टाइप कर सकते हो, आराम से जो उसमें टाइप किया जा सकता है, आराम से उसमें वीडियो बनाए जा सकते हैं, इतने नए नए स्टूडियो खोले हैं जहाँ पर हिंदी में जो है मल्टीमीडिया का जो है प्रयोग किया जा रहा है। सो हिंदी, मुझे ऐसा लगता है, कहीं भी उस टेक्नोलॉजी से अब अछूती नहीं है, बल्कि उसका प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हिंदी शायद बाकी भाषाओं की तुलना में कहीं आगे आपको जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिखाई देगी।
बहुत अच्छा, आपने बहुत प्रेरणादायक बातें कही जो हमारे लिए, हमारे शिक्षकों के लिए, हमारे गुरुजी, बहन जी, हम यहाँ पर बहन जी बोलते हैं, अध्यापिकाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अंत में हम सिर्फ यही जानना चाहेंगे, समय बहुत जल्दी गुजर जाता है, कि आप मॉरिशस के अध्यापक अध्यापिकाओं, परिवार और बच्चों के लिए अब क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं मॉरिशस के अभिभावकों, छात्रों, छात्र छात्राओं, अध्यापक अध्यापिकाओं को, सभी को यह संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपनी जड़ों से वो जुड़े रहें। किसी भी देश की सफलता तब रहती है कि जब उसके देश के निवासी अपनी जड़ों से जो हैं वो जुड़े होते हैं। तो जो भी आपकी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, आप उनके साथ जो हैं जुड़े रहें। वो सबसे, जिस भी काम को करें उसमें उत्कृष्टता की बात करें, एक्सेल होने की बात करें कि मुझे इस काम में सबसे ज़्यादा सफल होना है। चाहे वो आप पढ़ने के बारे में बात करते हैं, आप खेलकूद के बारे में बात करते हैं, आप कुछ एक्टिंग के अंदर जाना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र के अंदर आप जाना चाहते हैं, आप ये देखें कि मैं उसमें सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन जो है वो करूँ। और सबसे पहले अपने आप को सामने लेकर आएँ, ये ना सोचें कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आपको अपने शेल से, जिसको हम कहते हैं, बाहर आने की आवश्यकता है और अपने आप को पूर्ण रूप से सभी के सामने प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। अपने टैलेंट को, अपने हुनर को खुद पहचानने की ज़रूरत है। और अभिभावकों से मेरा निवेदन रहेगा कि बच्चों के हुनर को पहचानें, उस हुनर के अनुसार उनको जो है आगे बढ़ने का अवसर दें। और अभिभावक और जो अध्यापकगण हैं वो भी उन गुणों को जो है निखारें और उनको आगे बढ़ाएं, ताकि जो यहाँ के छात्र और छात्राएं हैं वो एक भावी मॉरिशस, एक अच्छे मॉरिशस, एक विकसित मॉरिशस के लिए जो है अपना योगदान दे सकें।
बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे श्रोतागण, आज हमने नई टेक्निक, नई औजार और नई संभावनाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। आशा है कि आपको अवश्य लाभ हुआ होगा। डॉक्टर संजय सचदेवा जी, स्टूडियो में आने और मूल्यवान विचार देने के लिए विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से, क्षितिज की ओर से और स्वयं मेरी ओर धनराज शंभू की ओर से आपका हार्दिक आभार। आपने टेक्निकी सहयोग के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी और आज कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम अपने मित्र जो टेक्निकी सहायक दे रहे हैं सुनील जी को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। एक और कार्यक्रम तक हमारी प्रतीक्षा करें। सभी को धन्यवाद और आभार।
धन्यवाद।